हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे आज के इस बुधवार के कार्यक्रम में, और मैं अपने आप का स्वागत करना चाहूंगा आज के इस बुधवार के कार्यक्रम में। अपने पिछले सेटिंग में श्लोक क्रमांक 30 तक मैंने चर्चा की थी, तो कई भक्तों का अनुरोध था कि उसी से आगे मैं इस चर्चा को बढ़ाऊं, तो आज हम श्लोक क्रमांक 31 लेंगे, प्रथम अध्याय का। न च श्रेयो नु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न च श्रेयो नु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न च श्रेयो नु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। भगवद गीता का ये जो पहला अध्याय है, जिसमें अर्जुन अपना विषाद व्यक्त कर रहे हैं, और विषाद इसलिए व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि अपने स्वजनों को वो शत्रु के रूप में नहीं देख रहे, जबकि उन्हें देखना चाहिए था, परंतु वो नहीं देख रहे। और अर्जुन विविध कारण दे रहे हैं युद्ध नहीं करने के, और वो सारे कारण शास्त्रों पर आधारित है। ऐसा एक भी कारण नहीं है जो अर्जुन स्वयं का कोई मनगढ़ंत उत्पादन किए हैं और दे रहे हैं। जैसे कि इस श्लोक के पिछले श्लोक में, यदि आपको याद रहा होगा, तो अर्जुन कहते हैं कि मैं भ्रमित हो रहा हूं हे कृष्ण, और भ्रमित अवस्था में जो निमित्त मैं बन रहा हूं, निमित्त का अर्थ है मैं जो कारण बन रहा हूं, वो किसका कारण बन रहा हूं? निमित्तानि च विपरीतानि। जो हम सब इकट्ठा हुए हैं जिस उद्देश्य से, उसका बिल्कुल विपरीत उद्देश्य यहां पर मिलने वाला है। क्या? कि सब कुछ जो सुख प्राप्त करने हेतु ये युद्ध लड़ा जा रहा है, वो कुछ नहीं मिलने वाला। निमित्तानि च विपरीतानि। और पिछले श्लोक में अर्जुन अब बीच में खड़े हैं दोनों सेनाओं के मध्य में, और दोनों सेनाओं के मध्य से वो जब कुरु सेना की तरफ देख रहे हैं, तो अब वो सेना को बिल्कुल नहीं देख रहे। उनके आंखों से कुरु सेना नहीं दिख रही, और कुछ उनके आंखों से दिख रहा है, जो कि यहां पर इस श्लोक में वो कहते हैं अनुपश्यामि। पश्यति का अर्थ है देखना। तो यहां पर अर्जुन कृष्ण से कहते हैं अनुपश्यामि, मैं क्या देख रहा हूं अपनी आंखों से? न च श्रेयः। श्रेय का अर्थ है कुछ उपलब्धि, सफलता, उसे श्रेय कहते हैं। तो अर्जुन कहते हैं न च श्रेय, मैं कोई इसमें श्रेय या उपलब्धि या सफलता नहीं देख रहा हूं, कुछ नहीं दिख रहा मुझे। हत्वा स्वजन माहवे, किसमें? अपने स्वजनों की हत्या करने में। और फिर वो आगे कहते हैं न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, मैं क्यों यहां पर खड़ा हूं? न तो मुझे राज्य चाहिए, न तो मुझे सुख चाहिए, न मुझे विजय चाहिए। इन तीनों में से मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं यहां पर उपस्थित ही क्यों? हे कृष्ण, भगवान को कृष्ण शब्द उल्लेख कर कर वो पुकार रहे हैं। तो श्लोक के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हम लेंगे। सबसे पहले अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम, इस वाक्य को, न कांक्षे विजयम राज्यम सुखानि, श्रेयः एवं अर्जुन भगवान को कृष्ण इस नाम से पुकार रहे हैं। तो इनका अर्थ तो आप समझ गए होंगे। अनुपश्यामी का अर्थ है देखना, हत्वा का अर्थ है हत्या, स्वजन उनके रिश्तेदार, न कांक्षे कोई इच्छा नहीं किसकी, विजय की, राज्य की और सुख की, श्रेय का अर्थ है कोई विशेष उपलब्धि सफलता, और भगवान श्री कृष्ण को उस नाम से पुकारा गया है। अब हम यदि अर्जुन के इस शब्द को लें अनुपश्यामी, तो ये जो अनुपश्यामी शब्द है ये किसके संदर्भ में है? हत्वा और किसकी हत्या? स्वजनों की हत्या। बहुत ही विशेष मुद्दा है गौर करने लायक कि अर्जुन अपने सामने किसे देख रहे हैं, किसे देखना चाहिए था अर्जुन को, परंतु किसे देख रहे हैं। अब कुरुक्षेत्र की रणभूमि है, वहां पर कुरु सेना, पांडव सेना सारे वो एकत्रित हुए हैं, और वो एकत्रित हुए हैं केवल कोई गेट टुगेदर के लिए नहीं, कोई सामाजिक उत्सव के लिए वो एकत्रित नहीं हुए, वो एकत्रित हुए हैं अस्त्र शस्त्र धारण कर कर, अर्थात युद्ध की इच्छा से। शंख भी बजा दिए, ये सब कुछ हो गया है, तो कोई शंका नहीं कि यहां पर पांडव और कौरव ये एक दूसरे के सामने क्यों खड़े। तो अर्जुन को अपने आंखों से अनुपश्यति, अनुपश्यामी, अब अर्जुन को क्या देखना चाहिए था? शत्रुओं को देखना चाहिए था कि वहां पर अब सारी कुरु सेना वो शत्रु की भूमिका निभा रही है, परंतु अर्जुन क्या देख रहे हैं? स्वजन। तो विशेष रूप से कलयुग में इस बात की प्रशंसा होगी कि अर्जुन अपने शत्रुओं को स्वजन कह रहे हैं। अर्जुन को क्या कहना चाहिए था? हत्वा शत्रुम। परंतु शब्द देखिए, कौन से शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं अर्जुन? हत्वा स्वजन, शत्रु नहीं कहा। कलयुग में उल्टा, यहां पर शत्रु को स्वजन कहा जा रहा है, और हम कलयुग में स्वजनों को शत्रु का पद दे देते हैं। तो अब अर्जुन देख रहे हैं, परंतु अर्जुन जो देख रहे हैं उसमें खोट है। भगवान कृष्ण के अनुसार वो ठीक से अपनी दृष्टि नहीं रखे हैं। अब देखिए, जब स्वजन की बात आती है तो यहां पर अर्जुन का एक जो विशेष प्रेम अपने परिवार से था वो अब दिख रहा है, पारिवारिक संबंध। यहां से भगवान श्री कृष्ण गौर कर रहे हैं कि अर्जुन ये भ्रम में ऐसे वाक्य बोल रहे हैं। इसका पहला जो श्लोक है उसमें अर्जुन ने क्या कहा? भ्रमतीव, कि मैं भ्रमित अवस्था में इस कुरु सेना को देख रहा हूं। तो भ्रमित अवस्था में अर्जुन शत्रु को नहीं बल्कि अपने स्वजनों को, तो अर्जुन का जो पारिवारिक संबंध है इन सब से वो ध्यान में आ रहा है, परंतु दुर्योधन इत्यादि ने जो कुछ किया है वो नहीं दिख रहा अर्जुन को। अर्जुन को केवल यही दिख रहा है कि ये मेरे संबंधी हैं, मेरे स्वजन हैं। स्वजन का अर्थ क्या है? जो मेरे साथ जन्मे, स्वजन्म। या मेरे परिवार में जन्मे। तो ये जो एक पारिवारिक आसक्ति होती है कि मेरे परिवार में जन्मा हुआ, मेरे कुल में जन्मा हुआ, आजकल तो खैर ये सब भी छोड़ दीजिए, परंतु यदि कोई किसी के परिवार में भी नहीं जन्मा है, परंतु यदि उस सरनेम का है या उस जाति का है, उस कौम का है, तो उसी में भी आसक्ति शुरू हो जाती। अरे आप भी खन्ना, मैं भी खन्ना, खन्ना परिवार। एक बार एक महात्मा वो एक गांव में गए और उस गांव में सभी एक ही कुल के थे और सभी अपने पूर्वजों पर बहुत गर्व किया करते थे कि हमारे पूर्वज इस प्रकार से ऐसे ऐसे उन्होंने पराक्रमी किए हैं। तो सभी केवल अपने पूर्वजों का गुणगान करते। तो अब ये महात्मा वहां पर पहुंचे तो सभी ने इनका स्वागत किया और पूछा कि भाई आप कुछ दिव्य संदेश देना चाहेंगे इस हमारे पूरे गांव जो एक कुल का है, एक खानदान का है। तो महात्मा जी कहते हैं कि ये जो आप पूरा अपना कुल खानदान और इसका इतना गुणगान कर रहे हो, ये आलू के पौधे के समान है। और चले गए महात्मा कह के, बस ये आपका पूरा गांव जो है एक बड़ा आलू का पौधा है बस। तो भी किसी को समझ में नहीं है ये कौन सा लेक्चर हुआ भाई, ये क्या उदाहरण हुआ आलू का पौधा। तो सभी एक दूसरे से चर्चा करने लगे, फिर जाके वापस बुलाया साधु महात्मा को, अब समझाइए क्या अर्थ हुआ आलू का पौधा, अब हमारे खानदान को आपने केवल आलू कह दिया, अरे सब्जियों में भी कुछ अच्छी सब्जी कहते, ये क्या आलू, आलू तो 2-3 रुपए में मिलते हैं, पता नहीं कितने में मिलते हैं आज। तो जब पूछा गया तो अब महात्मा जी बताते हैं कि क्यों उन्होंने आलू का पौधा कहा। वो कहे कि आलू के पौधे में जो आलू होता है वो जमीन के नीचे होता है और उसके ऊपर का जो पौधा है वो किसी काम का नहीं, जो असली उसके काम की वस्तु है वो जमीन के नीचे है। तो वैसे ही आपके जितने भी कुल में पूर्वज जो हुए वो सारे जमीन के नीचे हैं, कोई नहीं ऊपर, अब केवल आप, और केवल आप दिखा रहे हो कि देखो हमारा कुल, हमारा कुल। तो उस आलू के पौधे के समान जो असली माल नीचे, वो सब दफनाए गए अब नीचे हैं वो। तो यहां पर भी अर्जुन हालांकि बोल रहे हैं कि सारे जो मेरे स्वजन हैं हत्वा, ये सब मेरे द्वारा मारे जाने वाले हैं। यहां पर एक बहुत ही विशेष अर्जुन का गुण, अर्जुन की निष्ठा देखिए कि इस युद्ध के प्रारंभ होने से पहले अर्जुन निश्चित रूप से कह रहे हैं कृष्ण को कि ये मरने वाले हैं सारे। और कब बोल रहे हैं अर्जुन, जब गांडीव छूट चुका है हाथ से, वेपतुश्च शरीर में सब कुछ, ये गांडीव, गांडीव आगे छूटने वाला, छूट लिया, छूट गया पहले से, वो श्लोक हो गया ना वेपतुश्च, मेरे दिमाग से छूट गया। तो अब गांडीव छोड़ दिया है और श्रम सते हस्तात और वेपतुश्च शरीरे में, इस अवस्था में भी अर्जुन का विश्वास और निष्ठा अपने स्वयं के बल पर देखिए कि अर्जुन बोलते हैं कि ये सब मरने वाले हैं, इनमें से कोई जीवित नहीं रहेगा कृष्ण। अब इससे पहले दुर्योधन की भी निष्ठा दिखाई गई है, जब दुर्योधन भीष्म पितामह और इन सब के सामने अपना ढोल पीटता है कि देखो मेरी सेना कितनी बड़ी है और इनकी देखो इतनी सी, और आप भीष्म भी रक्षितम, कि भीष्म द्वारा रक्षित ये मेरी सेना, और क्या कुछ नहीं अपने सेना के विषय में। और दुर्योधन फिर राज नीतिज्ञ के रूप में बता रहा है कि कैसे वो जीतेगा। परंतु यहां पर अर्जुन इतनी निष्ठा से कैसे बोल सकते हैं? कृष्ण भी अचरज कर रहे हैं कि अर्जुन इतनी निष्ठा से कैसे बोल रहा है कि हत्वा ये सब मरने वाले हैं, क्योंकि अर्जुन अकेले, इससे पहले अर्जुन अकेले इन सब को परास्त किए थे। इसकी चर्चा हमने पहले भी की है, जब अज्ञातवास में महाराज विराट के राज्य में ये सब थे, तो अर्जुन एक क्या कहेंगे उसे, बृहन्नला, एक हिजड़े के रूप में, एक हिजड़े के रूप में अर्जुन ने, संस्कृत में उसे क्लैब्यम कहते हैं, कि उस रूप में अर्जुन ने अकेले इन सब को परास्त किया था। तो अब यहां पर इतनी सारी सेना अर्जुन के साथ है और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण है, तो अर्जुन का ये विश्वास कि ये सारे मरने तो वाले ही हैं। परंतु अर्जुन यहां पर यदि शत्रु कहते तो अर्जुन थोड़ी माया से बाहर निकल जाते, परंतु स्वजन कह रहे हैं, अर्थात वो जो पारिवारिक संबंध है वो अब तक इतना गहरा है कि वो अब तक छूट नहीं पा रहा, शब्दों में व्यक्त हो रहा है। तो ये अर्जुन की दृष्टि है। अनुपश्याम, तीन प्रकार की दृष्टि होती है। एक है अज्ञान युक्त दृष्टि, ज्ञान युक्त दृष्टि, तीसरी क्या होगी, प्रेम युक्त दृष्टि। हालांकि हम सब की आंखें तो एक समान है, ये आंखें एक समान बनी हुई हैं। यदि बायोलॉजिकली लेबोरेटरी में हम सब की आंखें हम जाकर चेक करें तो एक प्रकार की सबकी आंखें हैं, उसका जो वर्किंग सिस्टम है वो सब एक प्रकार से है। परंतु फिर भी यहां पर देखिए, अर्जुन कुछ और देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण और कुछ देख रहे हैं, दुर्योधन वो कुछ और देख रहा है, कर्ण, कर्ण के विषय में बताया गया है कि देखिए कर्ण हालांकि वो दुर्योधन के पक्ष में, परंतु कर्ण युद्ध के बीच में, युद्ध जब 8-10 दिन का युद्ध हो चुका था और कर्ण उसके जब युद्ध करना शुरू कर दिए थे भीष्म पितामह के पश्चात, जब बाणों की शैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे, तो ये कर्ण की दृष्टि, कर्ण भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि ये मैं जो देख रहा हूं ये कोई रणभूमि नहीं है, क्योंकि कर्ण ने रणभूमि प्रथम दिन से नहीं देखी थी, प्रथम दिवस से एक रणभूमि को नहीं देखा, तो केवल कर्ण समाचार सुन रहा था कि युद्ध ऐसे हो रहा है, अब ये मरा, अब अगले दिन ये होने वाला है। तो कर्ण भगवान श्री कृष्ण से वार्ता करते हुए कहता है कि ये रणभूमि बिल्कुल नहीं है, ये यज्ञ भूमि है। और देखिए कि इसके विषय में कुरुक्षेत्र की रणभूमि को यज्ञ भूमि सबसे पहले किसने कहा था? हाँ? सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने, धृतराष्ट्र ने क्या कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, क्योंकि धृतराष्ट्र हालांकि वो अंधा देख नहीं पा रहा था, परंतु धृतराष्ट्र ने इतिहास में सुना था कि ये जो कुरुक्षेत्र है ये साधारण क्षेत्र नहीं है, ये धर्म क्षेत्र है। और यहां पर कर्ण वो भी भगवान श्री कृष्ण को बोल रहा है कि ये यज्ञ भूमि है, ये रणभूमि नहीं है, और इस यज्ञ भूमि में आप यज्ञपति हो, ये कर्ण बोल रहा है, आप यज्ञपति हो। और अर्जुन जो है, सभी योद्धाओं में से अर्जुन को चुना कर्ण ने, कहा कि अर्जुन जो है वो जो पुरोहित होता है वो, युधिष्ठिर महाराज यजमान हैं और इसमें आहुति किसकी चढ़ रही है? यज्ञ का अर्थ है आहुति चढ़ना। तो अर्जुन जो कि पुरोहित आहुति चढ़ा रहे हैं किसकी? हमारी। ये कर्ण के वाक्य है। हम सारे जो एक कुरु सेना के यहां पे खड़े हैं, हम सब की आहुति ये अर्जुन इस यज्ञ में चढ़ा रहे हैं आपकी प्रसन्नता के लिए। तो ये कर्ण की दृष्टि ऐसे क्यों थी? हालांकि कर्ण, उसने अपने पूरे जीवन केवल दुर्योधन का संग किया, पूरे जीवन तो नहीं, अधिकांश उसका जीवन, परंतु फिर भी कर्ण के अंदर इस प्रकार की दृष्टि इसलिए आई क्योंकि कर्ण संबंधित था पांडवों से। हालांकि पांडवों के साथ रहा नहीं कर्ण, परंतु फिर भी सबसे बड़ा पांडव कुंती पुत्र, सबसे अग्रज ये कर्ण, केवल उस संबंध के वजह से कर्ण के अंदर ऐसी सद्बुद्धि और ऐसी दृष्टि कि सबसे पहले दिन जब वो रणभूमि पर आता है, उतरता है, तो भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि ये रणभूमि है ही नहीं, ये यज्ञ भूमि है। तो वो जानता है कि हमारी आहुति चढ़ने वाली है, परंतु फिर भी दुर्योधन के पक्ष में कर्ण युद्ध करता। तो इसलिए दृष्टि बहुत आवश्यक है, जिसमें जानना, सबसे पहले प्रकार की जो दृष्टि, अज्ञान युक्त दृष्टि, जो कि अशुद्ध मन एवं आंखों के संसर्ग से ऐसी दृष्टि प्राप्त होती है। अब देखिए, जब दुर्योधन वो जब अपनी दृष्टि जहां कहीं पर भी डालता, तो दुर्योधन की दृष्टि इस प्रकार की थी, वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं, परंतु दुर्योधन के अशुद्ध मन और आंखों में भी परिवर्तन नहीं। आंखें तो केवल एक यंत्र है, परंतु दुर्योधन के अशुद्ध मन के कारण ये आंखें किसी वस्तु को अशुद्ध तरीके से देखती थी। जैसे महाभारत में कथा है कि युवराज किसे चुना जाए, सबसे पहले जब इसकी एक परीक्षा ली गई, तो युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन, इन दोनों को हस्तिनापुर में भेजा गया। तो युधिष्ठिर महाराज को यह कहकर भेजा गया कि जाकर खोज कर लाओ कि सबसे अधम व्यक्ति कौन है हमारे राज्य में, और दुर्योधन को भेजा गया जाकर ढूंढ कर लाओ सबसे उत्तम व्यक्ति कौन है। दोनों खाली हाथ आए और दुर्योधन ये खाली हाथ इसलिए आया कि मुझसे उत्तम तो कोई दिखा नहीं मुझे, सबसे उत्तम तो मैं ही, पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम मैं। तो फिर युधिष्ठिर महाराज खाली हाथ कैसे आए? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज, उन्होंने कहा कि मुझसे ज्यादा अधम मुझे और कोई नहीं दिखा, ये उनकी दृष्टि देखी। और इस कथा में बताया गया है कि युधिष्ठिर महाराज आते समय रास्ते में उन्होंने एक व्यक्ति को कुएं से पानी निकालते हुए देखा, तो युधिष्ठिर महाराज समझे कि ये व्यक्ति आज के दिन पानी निकाल रहा है पीने के लिए, ये सबसे अधम व्यक्ति लगता है हमारे राज्य का। अब आप लोग आश्चर्य में पड़ गए हो, कुएं से पानी निकालने में अधम अवस्था कैसे आ गई? उस दिन एकादशी थी, तो एकादशी के दिन कोई कुएं से पानी निकाल रहा है अर्थात पीने के लिए। इससे क्या समझे हम कि उस समय हर एक व्यक्ति निर्जल करता था, निर्जलाए, सबसे पहले तो एकादशी सब करते थे। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात होगी कि सभी लोग एकादशी करते थे, परंतु एकादशी में भी निर्जला एकादशी सभी। तो युधिष्ठिर महाराज जाके पूछे कि भाई आज एकादशी है और तुम पानी निकाल रहे हो कुएं से? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बैलों के लिए और घोड़ों के लिए निकाल रहा। तो युधिष्ठिर महाराज को इतना बुरा लगा कि मैंने अपनी दृष्टि में अशुद्धि देखी, अशुद्ध दृष्टि से मैंने इस व्यक्ति को देखा। देखिए ये युधिष्ठिर महाराज का स्तर। इसलिए जाकर वो भीष्म पितामह विदुर से कहे कि मुझसे ज्यादा अधम कोई नहीं, और वो अपने आप को अधम इसलिए बता रहे हैं कि उन्होंने दोष देखा किसी के अंदर। कोई साधारण सा जन था वो, जनता का, प्रजा। अब यहां पर हम जब अशुद्ध मन एवं आंखें, इतना कुछ कहा गया है शास्त्रों में हमारे मन को शुद्ध करने के विषय में, कि जब हम मन को शुद्ध करते हैं तो अपने आप उस शुद्ध मन से जो भी हम वस्तु को देखते हैं, स्थिति को देखते हैं, व्यक्ति को देखते हैं, तो वो दृष्टि हमारी शुद्ध दृष्टि होती है। तो यहां पर अब अर्जुन के अंदर इस बात का अज्ञान है कि ये मेरे स्वजन है, ये मुझसे संबंधित है। इस अज्ञान से, इस दृष्टि से अर्जुन देख रहा है, इसलिए ये अज्ञान युक्त दृष्टि अर्जुन की दिख रही है, ये एक प्रकार। अब ज्ञान युक्त दृष्टि जिसके अंदर हम देखते हैं परंतु मन से ज्यादा या मन के बजाय हम हमारी बुद्धि से किसी वस्तु, किसी स्थिति को देखते हैं। कोई उदाहरण आपकी तरफ से आप बोल सकते हैं कि कौन से ऐसी स्थितियां होंगी या स्थितियां हो सकती है जिसमें हम देख रहे हैं परंतु अपनी बुद्धि की आंखों से देख रहे हैं। अर्थात ज्ञान युक्त दृष्टि से, कि उस दृष्टि में ज्ञान का झुकाव ज्यादा है। हम अपनी आंखें तो रोज कितने वस्तुएं, चीजें देखने में इस्तेमाल करते हैं, तो कोई दिनचर्या जो हमारी चलती है उसमें ज्ञान युक्त दृष्टि कब कब होती है हमारी? हाँ, अभी जो हो रही है ज्ञान युक्त दृष्टि है, कि हालांकि कई बार अज्ञान युक्त भी हो जाती है कि जब थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि ये एरो कहां से कहां जा रही है। तो अज्ञान तो छोड़ ही दीजिए, दृष्टि नहीं रहती, फिर आंखें ही बंद हो जाती है। तो ये एक अच्छा उदाहरण है कि यहां पर हम जो कुछ देख रहे हैं तो ये ज्ञान युक्त दृष्टि है। अब देखिए ज्ञान युक्त दृष्टि में हम कानों से सुनते हैं फिर आंखों से देखते हैं, ये अंतर है। तो यहां पर यदि ये माइक बंद कर दिया जाए और मैं बिना कुछ कहे केवल होंठ हिलाता रहूं और यहां पर केवल आपको ये जो प्रेजेंटेशन है ये दिखाता रहूं, तो क्या समझ में आए, क्या हो रहा है? तो जब हम सुनते हैं कानों से और फिर उस ज्ञान से हम जब देखते हैं हमारी आंखों से, तो वो दृष्टि अलग होती है। जैसे कई बार हमने ये उदाहरण दिया है कि कोई भी एक व्यक्ति, उसे हम पहले अपने इन आंखों से देखते हैं। जैसे आपके सामने एक एक्सरसाइज रखेंगे, आप थोड़ा इधर आएंगे, तो हम अब इन्हें अपनी आंखों से देख रहे हैं। आप लोग सब, हम लोग सब इन्हें अपनी आंखों से देख रहे हैं, परंतु हम में से बहुत से होंगे जो नहीं जानते होंगे इन भक्त को, तो वो कौन सी दृष्टि है? अच्छा बताइए इनका नाम क्या है? अब देखिए इन्होंने कहा है उनका नाम प्रभु जी है। प्रभु जी क्यों? क्योंकि वो आंखों से देख रहे हैं, दिखने में ये मंदिर में आए हैं, आते रहते हैं, बहुत बार देखा है बुधवार के कार्यक्रम में, तो प्रभु जी होंगे, माता जी तो नहीं दिख रहे। तो ये भी ये ज्ञान युक्त दृष्टि नहीं है, ये केवल आंखों से जो। तो फिर यदि और भी हम प्रश्न पूछते जाएं कि ये कौन से खानदान से हैं, ये कौन सी भाषा बोलते हैं, इनकी मातृभाषा कौन सी है, पितृभाषा मातृभाषा का मातृभाषा कौन सी है, और कौन सा रंग इन्हें पसंद है, ये सारी ये प्रश्न हमें कुछ ज्ञान नहीं, तो हम क्या, और इन्होंने ये कौन से कॉलेज में जाते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं, तो ये सब हमारी आंखें नहीं बता सकती। परंतु यदि कोई आके इनका परिचय दे कि प्रभु जी PhD कर रहे हैं IIT पवई में, और प्रभु जी अब शीघ्र ही MIT में जाने वाले हैं, MIT यदि आपको पता है अमेरिका में जो है, और बहुत विद्वान हैं और बहुत से अन्य गुण हैं, उसके पश्चात जब आप देखोगे अरे केवल प्रभु जी नहीं तो महाप्रभु जी लगते हैं, तो फिर वो जो दृष्टि है वो ज्ञान युक्त दृष्टि होगी। आप बैठ सकते हैं। तो अब देखिए कि हमें ज्ञान कहां से मिलता है, क्या क्या सूत्र हैं ज्ञान के, देखने से मिला ना, उससे भी ज्ञान मिला, देखने से ज्ञान मिला, प्रत्यक्ष प्रमाण, भगवद गीता कोर्स में हम चर्चा करते हैं ना, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। तो यहां पर अर्जुन अनुपश्यामी स्वजनम हत्वा, ये कौन सा प्रमाण है अर्जुन की दृष्टि का? प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष और अनुमान, शब्द प्रमाण अब तक शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अब तक भगवान श्री कृष्ण अपने शब्द वाणी नहीं सुना रहे, तो अब तक केवल ये दो प्रमाण, अर्जुन इन दो प्रमाणों पर आधारित अपनी दृष्टि को रखे हैं, प्रतिअक्ष अपने सामने स्वजन को देख रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं कि ये जब मरेंगे तो मुझे क्या सुख मिलने वाला है, वो अनुमान है जो पिछले स्लाइड हमने देखी, अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम। तो स्वजन जो है प्रत्यक्ष प्रमाण, और हत्वा अभी तो मरे तो नहीं, खड़े हैं ना, जीवित हैं, तो जो हत्वा है वो क्या है, अनुमान प्रमाण। तो हम क्या कहते हैं, हम गीता कोर्स में चर्चा क्या करते हैं कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण ये भी ज्ञान देते हैं, परंतु ये संपूर्ण परिपूर्ण ज्ञान हमें नहीं दे सकते, परिपूर्ण ज्ञान हमें मिलता है शब्द प्रमाण से, और वो है ज्ञान युक्त दृष्टि। परंतु इससे भी परे प्रेम युक्त दृष्टि, जो कि शुद्ध आत्मा जब इस आंख यूपी यंत्र से हमारा शुद्ध आत्मा जब देखता है तो वो प्रेम के अंजन से देखता है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसमें प्रभुपाद अक्सर इस श्लोक को कहा करते थे कि वो योगी हर समय सदैव यम श्याम सुंदर, हर समय वो श्याम सुंदर भगवान को कब देख सकेगा, जब प्रेम का अंजन वो लगाएगा, जब प्रेम का अंजन उसके आंखों पर लगेगा। वो प्रेम का अंजन क्या है, इस प्रकार का, जब भगवान की भक्ति में वो लगता है। तो वही अर्जुन पूरी भगवत गीता श्रवण करने के पश्चात केवल ज्ञान युक्त दृष्टि नहीं थी उनकी, फिर प्रेम युक्त दृष्टि थी कि ये मेरे आराध्य देव हैं भगवान श्री कृष्ण, और इनकी प्रसन्नता के लिए मैं ये युद्ध कर रहा हूं। फिर अर्जुन यही कह रहे हैं न कांक्षे राज्यम सुखानी च विजयम, तब भी उनके अंदर कोई आकांक्षा नहीं राज्य की, सुख की और विजय की, एक ही आकांक्षा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, क्योंकि फिर वो प्रेम युक्त अंजन से देख रहे हैं। अब देखिए, जो अज्ञान युक्त दृष्टि होती है और जो प्रेम युक्त दृष्टि होती है, इनमें समानता है। कैसी समानता है? जैसे कि ब्रजवासी, ब्रजवासी जब भगवान श्री कृष्ण को देखते तो वो साधारण एक ग्वाल बाल के रूप में देखते उनको, तो एक दृष्टिकोण से कोई ये कहेगा अरे वो तो अज्ञान में थे, है ना? अज्ञान की दृष्टि से माता यशोदा डांट फटकार रही है भगवान कृष्ण को, दंड कर दे रही है, बांध रही है, तो माता यशोदा क्या अज्ञान युक्त दृष्टि से भगवान को देख रही है? नहीं, बाहर से ऊपरी रूप से दिखेगा कि हां वो अज्ञान रूप दृष्टि है, परंतु नहीं, वो प्रेम युक्त दृष्टि है। इसलिए हमें सबसे पहले देख लेना चाहिए कि अर्जुन ये कौन कौन से स्तर से गुजरते हुए प्रेम युक्त दृष्टि तक आ रहे हैं। तो भगवद गीता जब हम भी श्रवण करते हैं तो सबसे पहले केवल प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, केवल इसी पर आधारित हम इस संसार को देखते हैं जैसे अर्जुन देख रहे थे। हालांकि अर्जुन तो खैर बहुत प्रगत, हम तो उस स्तर पर भी नहीं होंगे, परंतु उससे ज्यादा हमें ज्ञान युक्त और प्रेम युक्त, क्योंकि भगवान अंततः भक्ति का मार्ग बता रहे हैं और भक्ति के मार्ग को श्रवण और पालन करने के पश्चात ही हमारी जो दृष्टि होगी वो प्रेम युक्त दृष्टि होगी। अब अर्जुन ये वाक्य कहे, न कांक्षे विजयम राज्यम सुखानी, कि मुझे आकांक्षा विजय की भी नहीं है, किसी राज्य की भी नहीं है और सुख की भी नहीं। ये तीनों जो शब्द हैं ये आपस में संबंधित हैं। कैसे? क्योंकि बिना राज्य के कोई सुख नहीं और बिना विजय के राज्य नहीं। तो विजय जो है वो मान सम्मान दिलाता है, राज्य जो है ऊंचा पद दिलाता है, और सुख जो है वो सुख सुविधा। तो यहां पर देखिए, ये जो सुख सुविधा है ये बहुत ही स्थूल स्तर पर है। फैसिलिटी जो यहां देह को भोग करने की जो सुख सुविधा होती है वो, परंतु वो सुख सुविधा जब तक कोई ऊंचा पद नहीं मिलेगा तब तक नहीं, और ऊंचा पद मान सम्मान के वजह से मिलता है। तो अर्जुन ये तीनों देख रहे हैं कि मैं युद्ध तो जीतने वाला हूं, ये मैच फिक्सिंग हो गया, युद्ध तो मैं ही जीतने वाला हूं, इसमें तो कोई शंका नहीं है, तो युद्ध मैं जीतने वाला हूं तो सारा मान सम्मान मुझे ही मिलने वाला है। और पहले से अर्जुन को इतना मान सम्मान मिला हुआ था क्योंकि ये कोई पहला युद्ध नहीं जो अर्जुन खेल रहे हैं या लड़ रहे हैं। अर्जुन ने बहुत से युद्ध लड़े और इनके साथ, ऐसा नहीं कि इनके साथ पहला युद्ध लड़ रहे हैं, इनके साथ पहला लड़े हैं, जीते हैं, तो इसलिए मान सम्मान पहले से अर्जुन को मिला हुआ है इनके ऊपर विजय प्राप्त करने का। अब यह निर्णायक युद्ध है जिसमें कि राज्य भी मिलने वाला है। पहले जो युद्ध लड़े अज्ञातवास में उसमें राज्य नहीं मिला, परंतु इसमें राज्य भी मिलने वाला है और फिर सारी जो सुख सुविधा है। तो अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि मेरे अंदर ये विरक्ति पैदा हो रही है कि मुझे न तो कोई सुख सुविधा की आकांक्षा है, न किसी पद की आकांक्षा है, न मुझे मान सम्मान चाहिए। यहां तक कि अर्जुन कह रहे हैं कि मैं इनके सामने निहत्ता मारा भी जाऊं तो भी मुझे स्वीकार है। इतना भी नहीं, अर्जुन ये कह रहे हैं कि यदि मैं ये युद्ध भूमि को छोड़कर भीख भी मांगना शुरू कर दूं तो भी वो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। श्रेय के विषय में अर्जुन बता रहे हैं कि वो मेरे श्रेय हेतु होगा। यहां तक, इस हद तक अर्जुन, सोचिए अर्जुन जैसे क्षत्रिय और अर्जुन जैसे क्षत्रिय का मान सम्मान जो पूरे विश्व में फैला हुआ, अर्जुन भीख मांगने के लिए तैयार हो, युद्ध नहीं करेंगे। एक क्षत्रिय के लिए भगवान श्री कृष्ण आगे कहेंगे कि एक व्यक्ति जो सम्मानित है उसके लिए अपमान, अंग्रेजी में कहते हैं डिसऑनर इज वर्स देन डेथ, कि वो मरने के लिए तैयार, जैसे कि महाभारत में द्रुपद और द्रोणाचार्य, इन दोनों की बहुत घनिष्ठ मित्रता थी बचपन में, परंतु जब द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान किया तो द्रोणाचार्य, उन्होंने अर्जुन को भेजकर द्रुपद और उनकी सारी सेना को परास्त कर द्रुपद को बंदी बनाकर वो मंगवाए और फिर मारा नहीं, क्योंकि क्षत्रिय के लिए रणभूमि में मरना यह बहुत एक बड़ी उपलब्धि है। जैसे हम कलयुग में भी यदि देखें तो कलयुग में राजस्थान के बड़े बड़े जो क्षत्रिय हुए उनके विषय में बताया गया है कि जैसे मानो कोई चौधरी मानसिंह वो रणभूमि से फिर से अपने घर आए और वो दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो अंदर से पत्नी पूछती है कौन है, तो वो कहते हैं मैं चौधरी मानसिंह। चौधरी मानसिंह हो ही नहीं सकता, चौधरी मानसिंह या तो वो मरेगा या जीत के आएगा, अब तक जीतने का तो समाचार मिला नहीं, तो जीतने का समाचार नहीं मिला तो मरने का समाचार होना चाहिए, ये पत्नी बोल रही है। तो जो भी तुम हो दरवाजा नहीं खोलूंगी मैं। ये कलयुग की बातें हैं कि कलयुग में इस प्रकार के क्षात्र क्षत्रिय हुए हैं कि या तो मरना है रणभूमि पे या फिर विजय प्राप्त करनी। ये जो अर्जुन बोल रहे हैं, जो इतने सम्मानित क्षत्रिय बोल रहे हैं कि मैं भीख मांगने के लिए तैयार हूं, ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी था उस समय का कि कोई क्षत्रिय इस बात की, इस तरह की बात बोल रहा है। तो यहां पर हम क्या सीखते हैं, अब हम ये सीखते हैं कि जब हम अपने स्वधर्म के सामने खड़े होते हैं, अपना जो भी स्वधर्म है उस स्वधर्म के सामने जब हम खड़े होते हैं तो क्या हम केवल ये तीन चीजों के पीछे हैं, स्वधर्म का पालन कर रहे हैं? क्या केवल मान सम्मान, ऊंचा पद और सुख सुविधा, इसके लिए हम अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं या इससे परे? भगवान श्री कृष्ण अंततः अर्जुन को बोलते हैं कि यह सही बात है कि मान सम्मान, ऊंचे पद और सुख सुविधा के लिए ये तुम्हें युद्ध नहीं करना, तुम्हें युद्ध करना है, तुम इसके भी परे जाओ, तुम्हें युद्ध करना है अपने आत्मा के स्वधर्म का पालन करने के लिए, और वो क्या है, मुझे प्रसन्न करना। तो इसलिए यहां पर अर्जुन ये कह रहे हैं कि मुझे न तो जीते जी इसमें कोई फायदा दिख रहा है, मरने के पश्चात भी मुझे कोई फायदा नहीं दिख रहा, इसलिए फिर वो इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं श्रेय। अब ये श्रेय, इसके विषय में हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो हम मनुष्य हैं, हमारे दो प्रकार के कार्य होते हैं, विशेष रूप से मनुष्यों के विषय में बताया गया है, दो प्रकार के कार्य हैं, प्रेयस और श्रेयस। तो ये जो प्रेयस है ये रजोगुणी सुख प्राप्त करने के लिए होता है, श्रेयस सत्वगुणी सुख, प्रेयस तूल स्तर पर होता है और श्रेयस सूक्ष्म स्तर पर। अब देखिए, जो जानवर होते हैं वो केवल एक ही कैटेगरी में आते हैं, प्रेय। क्या? कि केवल प्रयास करो और वो रजोगुणी सुख को प्राप्त करो। भगवान 18वें अध्याय में बताते हैं कि ये रजोगुणी सुख क्या है, ये प्रेय क्या है। वो सुख जो शुरुआत में अमृत तुल्य लगे परंतु अंत में विष तुल्य, वो है रजोगुणी सुख। इसे कहते हैं तात्कालिक सुख, इमीडिएट एंजॉयमेंट जिसे कहते हैं। मान लीजिए कि गर्मी का मौसम है और झुलसती हुई धूप में आप बाहर से कहीं पर, या कोई व्यक्ति बाहर से कहीं, अब भूखा प्यासा, सबसे पहले प्यास लगी है तो कुछ ठंडा पीना चाहता है, तो वो कोई ठंडा जो भी कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए गया और उसमें वो, हम इसकी चर्चा कर रहे थे संडे को, तब इतनी आकांक्षा है, प्यास लगी है, धूप है और ये ठंडा कोल्ड ड्रिंक अब खोल के उसे दिया गया है? तो अक्सर लोग देखते हैं ना, बॉटल को पहले देखते हैं क्या इसमें, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो इंग्रेडिएंट्स में लिखा है कार्बोनेटेड वाटर, शुगर एंड पोटेशियम साइनाइड। तो 90% वो कार्बोनेटेड वाटर है, 5% शुगर है और कुछ 4% और कोई प्रिजर्वेटिव और 1% पोटेशियम साइनाइड, केवल 1%, 1% है। तो अब यदि वो रजोगुणी सुख प्राप्ति के हेतु पी रहा है तो कहेगा अरे वो तो बाद में ना, उसका इफेक्ट तो बाद में समझ में आएगा, क्योंकि इतना जो 90% कार्बोनेटेड वाटर में 1% जो भी जो विष है उसका इफेक्ट बाद में आएगा, पहले तो प्यास बुझाओ। तो अब देखिए, जो जानवर होते हैं, हालांकि आजकल तो जानवर भी थोड़े अच्छे हैं कि उन्हें भी समझ में आ जाता है कि ये विषैली वस्तु है, परंतु रजोगुणी जो सुख है वो सुख कैसा है कि तात्कालिक सुख के पीछे केवल। श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण दिया करते थे कि जैसे कई बार सब्जी मार्केट में कोई गाय या बैल वो अपना मुंह मारती है, गाय किसी सब्जी वाले के सब्जी में मुंह मारती खाने के लिए, तो वो क्या करता है, डंडे से मारता है, तो उस समय उसे वो डंडा लगा तो समझ में आया कि मुझे मुंह नहीं मारना चाहिए, परंतु फिर वो भूल जाती है गाय, फिर से जाके मुंह मारती उसी सब्जी वाले की उसी टोकरी में। एक कुत्ता भी देखिए, कुत्ते को आप ब्रेड दिखाओ और वो अपनी दुम हिलाते हुए भाग के आएगा, और उसके बाद उसे जोर से कोई मारे तो कह 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 करके भागेगा, फिर से ब्रेड दिखाओ फिर से आएगा भाग के। तो ये ना प्रेय जो है केवल तात्कालिक सुख। अब मनुष्य के अंदर ये प्रेय के साथ श्रेय भी सिस्टम फिट किया है कि हम जानते हैं कि यदि कोई मुझे ब्रेड के साथ डंडा दिखाता है तो उसके पास फिर से नहीं जाना चाहिए, परंतु यदि कोई फिर से जा रहा है, अर्थात वो पशु स्तर पर है, उस स्तर पर गोखर इसे शास्त्र में कहा गया है, तो सूक्ष्म हम मनुष्यों के अंदर प्रकृति ने, भगवान ने ये सूक्ष्म सुख प्राप्त करने की जो कला है वो दी है, और ये जो सूक्ष्म सुख है ये जो जानवर हैं या पशुवत वृत्ति के हैं वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो अब यदि हम श्रेय इस शब्द को और गौर से देखें तो वो सूक्ष्म स्तर सबसे सूक्ष्मता के स्तर पर कब आता है, जब हम इस जन्म को छोड़कर अगले जन्म के सुख के विषय में चर्चा करते हैं। वो तो सबसे सूक्ष्म है, अगला जन्म तो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, कोई विश्वास ही नहीं करता, दिखाई देना तो दूर की बात है। परंतु एक जो अपने अंतिम वास्तविक श्रेय के विषय में चर्चा कर रहा है, जिज्ञासा कर रहा है, तो वो अपने अगले जन्म के विषय में जिज्ञासा करता है। इसलिए यहां पर अर्जुन ये कहते हैं, न च श्रेयो अनुपश्यामि, न तो मैं अपना श्रेय जीते जी देख रहा हूं, न मरने के बाद, इसके अंदर मैं अपना श्रेय नहीं देख रहा। अब यहां पर देखिए, हम जो भी देखते हैं, अर्जुन की तरह दृष्टि होनी चाहिए कि आगे अगले जीवन में क्या मुझे दिख रहा है, अपने विषय में क्या कुछ दिख रहा है कि अगले जीवन में मैं अपना अगला जीवन श्रेयस्कर बना रहा हूं कि नहीं। जैसे हमने एक बार राधा गोपीनाथ मंदिर में जन्माष्टमी पर एक पपेट शो रखा था, कठपुतली का खेल। तो उसकी कथा ऐसी थी कि एक व्यापारी, वो अपना सारा जो भी व्यापार में मुनाफा फायदा हुआ वो लेकर अपने गांव जा रहा था नाव पर। तो नाव से वो नदी पार करते हुए अपने गांव जा रहा था, बाढ़ आ गई, पूरी नाव उल्टी हो गई, परंतु ये कैसे तो अपने आप को इसने तैर कर बचा लिया। और ये तैरते हुए एक ऐसे द्वीप पर पहुंचा, जैसे ही उस द्वीप पर पहुंचा तो वहां पर पहले से बहुत से लोग ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसकी प्रतीक्षा में खड़े थे। मानो आप कई बार ऐसे अनुभव यदि कभी किए होंगे कि आप किसी स्टेशन पे उतरे हैं और बहुत से लोग आपके स्वागत के लिए खड़े हुए। एक बार ऐसे हुआ, राधानाथ महाराज वो बेलगाम जा रहे थे और उस फ्लाइट में इंडियन क्रिकेट टीम भी थी। तो महाराज जब बेलगाम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो पूरा कांग्रीगेशन वहां पर हार और सब कीर्तन में, इतने सारे मृदंग, करताल, वाम्पर और इतने भक्त वहां पर एकत्रित। तो उनकी तो आदत, वो सबसे लास्ट में बाहर निकलते हैं, तो ये पहले पूरी क्रिकेट टीम बाहर आई। तो इनको लगा हमारे स्वागत के लिए इतने लोग, तो उनको लगा कि उनकी स्वागत के लिए, क्योंकि वो सबसे प्रसिद्ध है ना। तो सब एक दूसरे से को देख रहे हैं कि देखो क्या स्वागत है, बेलगाम में ऐसा स्वागत हमारा। और सभी देखते देखते वो सारे जितने भी हार, एक भी हार उनको नहीं मिला। वो एक दूसरे को देख, कोई पहना ही नहीं रहा। और फिर जब महाराज आए तो सारे हार, ये कौन है ये सन्यासी, इनको सब मिल रहा है। तो वो देख रहे हैं पीछे, ये कौन है भाई। तो वैसे ही कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसे द्वीप पर पहुंचा और वहां पर इतने सारे सैकड़ों लोग खड़े हैं प्रतीक्षा में। तो जैसे ये द्वीप पर पहुंचता है तो वो सारे लोग चिल्लाते हुए, हमारे नए राजा की जय हो, हमारे नए राजा की जय हो। तो ये पीछे देखता है, जैसे एक क्रिकेट टीम पीछे देख रही कि ये नया राजा कौन। और तुरंत फिर यही, और तो कोई था नहीं वहां, तो इसे पालकी में बिठाया जाता है। पालकी में बिठाकर इसे नए राजा की वेशभूषा पहनाकर इसे, इसका राज्याभिषेक हो जाता है। अब इसके मन में तो ये प्रश्न उठ रहा था कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, परंतु इस समय ये नहीं पूछ रहा था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, राज्याभिषेक करा दिया, मैं तो मेरा सब कुछ, मेरा पूरा जो व्यापार का सब कुछ डूब गया, नाव डूब गई, मैं मरने वाला था, यहां तो राजा बन गया। तो उसने कुछ प्रश्न नहीं पूछा, चलने दो जब तक ये पिक्चर चलता है। तो अब एक दो महीना बीता तो उसने अपने एक मंत्री को बुलाया, कहा कि एक बात बताओ भाई, मैं तुम लोगों को कभी देखा नहीं, मिला नहीं, तुम लोग मुझसे कभी मिले नहीं, देखे नहीं, ये मुझे राजा क्यों बनाया तुम लोग। तो मंत्री बताता है कि सरकार आप पूछ रहे हैं तो यहां का नियम मैं आपको बताता हूं कि यहां एक साल के लिए केवल राजा बनता है कोई भी, और वो एक साल के पश्चात वो राजा को हम यहां से धक्के मारकर निकालते हैं, परंतु 1 साल तक जो भी राजसी ठाट बाट उसे मिलता है। तो 1 साल बाद क्या होता है, इसने पूछा। 1 साल बाद फिर जैसे आप आए तो हमें हमारे पूर्वज आलू, हमारे पूर्वज उन्होंने बताया था कि इस समय साल के अंत में जो इस दिशा से आएगा आपके द्वीप में वो आपका नया राजा होगा। तो इसलिए हम सब प्रतीक्षा में थे, पिछले राजा को हमने धक्के मारकर वो जो द्वीप दिख रहा है ना उस द्वीप पे हमने फेंक दिया। वो सारे जो पिछले हमारे राजा हुए हैं वो सब वहां पर हैं, पता नहीं जीवित हैं या जो भी हैं। तो आप आए अब तो आप इस साल के राजा। उसने कहा उसके बाद फिर मुझे भी वहां, और क्या, महाजनो ही नगता सपन, उनके पदचिन्हों पर आपको भी चलना है। तो अब ये जो राजा बना हुआ अब ये व्यक्ति, इसने सोचा कि मेरे पास कुल मिलाकर 10 महीने हैं, 2 महीने बीत चुके थे, 10 महीने मेरे पास हैं। तो इसने सारे मंत्रियों को बुलाया कि देखो भाई, मुझे राजा आप लोग मानते हो ना, तो मेरे पास सारे पावर आपने दिए हैं, तो मैं आदेश देता हूं कि सारा जितना भी धन है और जितनी भी प्रजा है, ये सारा धन और प्रजा वो जो द्वीप है जहां पर आप राजाओं को फेंकते हो उसे सजाने संवारने में लगाना है। तो सारी प्रजा सारा धन वहां पर भेज दिया और 10 महीना यहां पर अब सब कुछ वीरान हो गया, परंतु वहां का वो जो द्वीप उसके एक समृद्ध राज्य बन गया 10 महीने में। और फिर इनके नियमानुसार अब इसे वहां पर फेंकना, परंतु वो अब कोई ऐसा जंगल नहीं था जहां पर अन्य राजा सड़कर मर गए थे, वो एक समृद्ध राज्य जहां पर ये जाकर राजा बना और ये सारी प्रजा अब यहां पर ये वीराने में। तो ये लोग सोचे कि हम यहां पर क्यों रहे, तो वो भी वहां पर गए। और उसके पश्चात फिर वो राजा उस द्वीप में, बोलते ना किंग फॉर एवर, हैप्पीली फॉर एवर, वैसे उस प्रकार से वो जीता गया। तो ये हमने कठपुतली का खेल ये किया था। तो इसका तात्पर्य क्या, क्या सीखते हैं इससे? सीख ये थी कि हमारा जो मनुष्य जीवन है वो भी इस व्यापारी के 10 महीने के समान है, कि हमें नोटिस दिया गया है कि इतने वर्षों के पश्चात धक्के मारकर मनुष्य जीवन से बाहर निकाल दिया जाएगा यदि भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। तो तब तक सारी सुख सुविधा है, हम राजा हमारे राज्य के, कौन सा राज्य, ये जो हमारा शरीर है इसके हम राजा। तो हमारे पर निर्भर है कि हम जो अवधि हमारे पास अभी बाकी है उसमें हम कैसे ये सारे जो रिसोर्सेज हैं इसका इस्तेमाल हम करते हैं। इसे कहते हैं श्रेय, कि उसने वो जो 10 महीने तपस्या में गुजारे परंतु फिर आगे चलकर उसका भविष्य उज्जवल रहा। तो उसी प्रकार से महाराज ऋषभदेव कहते हैं तपो दिव्य पुत्र काय न सत्वम, ये जो मनुष्य देह मिला है ये आगे के श्रेय को जानने के लिए है, इसलिए दिव्य तप करो। और वो तप क्या है, हमारे श्रेय को जानने का। और इसलिए यहां पर अर्जुन, हालांकि वो अगले जन्म के विषय में बोल रहे हैं, परंतु असली श्रेय क्या है ये नहीं जान पा रहे। इसलिए भगवद गीता में अर्जुन ने ये श्रेय शब्द बहुत जगह पर इस्तेमाल किया है और हमारे भागवत में भी है। जैसे कि आगे के दूसरे अध्याय में अर्जुन अब पूरे त्रस्त, पूर्ण प्रकार से भ्रमित, अब कुछ सूझबूझ नहीं रहा, तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर घुटने टेक कर भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बनाते हैं और कहते हैं यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में, कि अब मेरा असली श्रेय क्या है, निश्चित रूप से हे कृष्ण आप मुझे बताइए, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, अब मैं आपका शिष्य बनकर आया हूं। तो यहां पर अर्जुन हमें क्या सिखा रहे हैं कि हमारा असली श्रेय यदि हमें जानना है तो हमें गुरु की शरण ग्रहण करनी है। तस्मात गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में बताया गया है कि जब हम गुरु की शरण ग्रहण करते हैं तो कैसी जिज्ञासा होनी चाहिए, सबसे उत्तम श्रेय को जानने की। सबसे उत्तम श्रेय क्या है? भगवत भक्ति, भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति। तीसरे अध्याय में भी अर्जुन कहते हैं तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम, कि मुझे अब फिर से आप बताइए कि मेरा असली श्रेय क्या है। फिर भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय में श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्म भयावह, कि असली श्रेय किसी मनुष्य का उसी में है जब वो अपने स्वधर्म का पालन ठीक से करे, परंतु जब दूसरे के धर्म का पालन करने वो जाता है, यहां तक भगवान कहें कि यदि अपने स्वधर्म में भी वो दोषपूर्ण रहे तो भी उसका श्रेय उसमें है, परंतु यदि कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली वो किसी और का अनुकरण करने जाता है, किसी और के धर्म का अनुकरण करने जाता है, तो उसमें भयावह, वो भयावह धर्म है। मध्व संप्रदाय के पेजावर स्वामी एक हैं, तो उन्होंने इस श्लोक के ऊपर एक अच्छा उदाहरण दिया कि हमारा क्या स्वधर्म है और उस स्वधर्म के अनुसार हमें अपने नियत कर्म का पालन करना चाहिए और दूसरों का अनुकरण करने से क्या होता है। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि मछली है, मछली को आप पानी में रखोगे, जैसे यहां पर इस पानी में मछलियां हैं, तो मछलियां पानी में सुख पूर्वक रहती हैं, परंतु यदि कोई ये मछली सोचे कि नहीं मुझे पानी से उत्तम किसी द्रव्य में जाना है, दूध में, तो ये उदाहरण दिया यदि मछली को पानी से निकालकर दूध में रखे कि मछली को दूध में तैरने दो तो उसमें मरेगी वो मछली। हालांकि पानी से उच्चतर दूध है, आजकल दूध का रेट ज्यादा है ना बिस्लेरी से, कि बिस्लेरी का ज्यादा है दूध, ज्यादा है ना अब तक, हालांकि पानी भी रहता है उसमें। तो अब यहां पर यह उदाहरण इसलिए दिया गया है कि यदि कोई कृत्रिम रूप से अपनी स्थिति को चेंज करना चाहे, किसी और का अनुकरण करना चाहे, तो उसी प्रकार से है जैसे मछली पानी से निकलकर दूध में तैरना चाहती है। तो यहां पर इस श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं कि श्रेयकर क्या है, कि जब हम अपने स्वधर्म का पालन करें। यहां पर अर्जुन को बता रहे हैं तुम्हारा स्वधर्म है, तुम क्षत्रिय हो, लड़ना जीतना दुर्योधन को मारना, इतना समझो। हालांकि ये तीसरे अध्याय का श्लोक है, परंतु आगे फिर अर्जुन के जो आत्मा का स्वधर्म है वो भी भगवान ने बताया। और भागवत में ये श्लोक आता है, इसमें भी श्रेय इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, श्रेय श्रुतिम भक्तिम मुदस्य ते विभो, ये 10वें स्कंद में है, जिसमें ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं, इसमें एक उदाहरण दिया है, उदाहरण है धान। धान जानते हैं आप लोग, चावल जिसके अंदर उगता है, हस्क जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, मराठी में क्या बोलते हैं, साल। तो उसके अंदर जो चावल का दाना, यह उदाहरण दिया गया है कि यदि कोई उस धान को कूट रहा है, आप देखे होंगे जब वो चावल को कैसे निकालते हैं, वो लोग उसे पीटते हैं, उसे कूटते हैं, तो उसमें से जो चावल का दाना है उस छिलके से बाहर, छिलका अलग हो जाता है और दाना अलग हो जाता है। तो यह उदाहरण दिया गया है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि कोई तोते मतलब खाली धान को कोई कूट रहा है, क्या निकलेगा उसमें से? श्रम एव ही केवलम, केवल पसीना निकलेगा, जो कूट रहा है उसके शरीर से केवल पसीना निकलेगा। तो भक्ति मार्ग की तुलना उस छिलके से की गई है, और जो चावल है उस छिलके के अंदर उसकी तुलना ये जो श्रेय है, क्या श्रेय? भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, वो उस चावल के दाने के समान है। तो यदि हम भक्ति मार्ग में भी हैं, परंतु यदि उस श्रेय को हम नहीं पा रहे, तो केवल एम्प्टी हस्क, बीटिंग दी एम्प्टी हस्क कहा जाता है, कि केवल वो खाली धान को कूट रहा है, कुछ नहीं। श्रम एव ही केवलम। एक और उदाहरण दिया गया है, यह उदाहरण थोड़ा यह समझ में आएगा हमें अच्छी से, क्योंकि हम लोग तो वो सब कभी देखे नहीं, केवल चावल के दाने को देखे हैं, खेत में जाकर ये सब तो इतना देखे नहीं होंगे। तो ये दूसरा उदाहरण है कि बिना भक्ति के जब हम कार्यों में लगते हैं, या जप या तप या जो भी अलग अलग प्रकार के पुण्य करते हैं, परंतु भक्ति यदि नहीं भगवान की, तो उसी प्रकार से है जैसे कोई मटका लिए है, मथनी लिए है, मथनी, परंतु अंदर पानी डाला है। यदि पानी को कोई मथेगा तो क्या निकलेगा उसमें से? चाहे कितना भी मथो, कितने भी सालों तक मथते रहो पानी को, कुछ निकलेगा उसमें से? उल्टा वो छलक के पानी कम होता जाएगा। तो वैसे ही बिना भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के जो भी हम जप तप इत्यादि करते हैं, वो पानी को मथने के समान है, कुछ नहीं निकलने वाला। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति वो उस दही के समान है, कि उसमें थोड़ा सा मथने से ही मक्खन उत्पन्न होता है, और वो मक्खन को चोरी करने वाले हैं माखन चोर। तो ये उदाहरण श्रम एव ही केवलम के विषय में श्रेय के विपरीत भागवत में दिया गया है। और अंतिम जो शब्द है, ये जो नाम अर्जुन ने भगवान कृष्ण को इस नाम से पुकारा, तो इसका अर्थ बताया गया है, कृष्ण का अर्थ सर्वोच्च, और न का एक और अर्थ बताया गया है आनंद। तो यहां पर मानो अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण को यह शब्द उल्लेख कर बोल रहे हैं कि आपका यह नाम है कृष्ण, जिसका अर्थ है सर्वोच्च आनंद जो प्रदान करें। तो सर्वोच्च आनंद प्रदान करने वाले आप, आपका यह नाम, आप मुझे इस प्रकार के कर्म में क्यों लगा रहे हो, जिसके अंदर न तो मुझे सुख मिलने वाला है, न मुझे राज्य या विजय की कोई आकांक्षा है, न जीते जी मुझे कोई आनंद मिलने वाला है, न मरने के पश्चात अगले जन्म में मुझे कोई आनंद मिलने वाला है। तो हर दृष्टिकोण से मुझे कोई आनंद नहीं मिलने वाला, और आपका नाम है कृष्ण, जो कि सर्वोच्च आनंद प्रदायक आप हैं। तो हे कृष्ण, आप क्यों मुझे इस युद्ध में प्रेरित कर रहे हो? अब तक तो भगवान ने कुछ प्रेरित भी नहीं किया, भगवान ने अपना प्रेरणा प्रोग्राम चालू भी नहीं किया, भगवान तो कुछ बोल भी नहीं रहे। अर्जुन ने ही कहा चलो बीच में ले चलो मेरा रथ, अर्जुन भगवान ले गए। अब भगवान आगे चलकर सुनाने वाले हैं कि असली आनंद जो मेरे नाम को तुमने पुकारा है कृष्ण, उसका जो असली आनंद है, वो सबसे पहले भगवान ने अपने शब्दों के द्वारा दिया, ये भगवद गीता के द्वारा, और फिर अर्जुन ने उस असली आनंद को भोगने के लिए अपने कर्मों में उन शब्दों को उतारा। तो यहां पर हम कृष्ण अर्थ, कृष्ण नाम के अर्थ को कैसे समझेंगे, कि ये जो कृष्ण है, हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम का उच्चारण इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें सर्वोच्च आनंद मिले, भगवान श्री कृष्ण को हम सर्वोच्च आनंद दें उनके भक्ति में आनंदित होकर। तो एक भक्त भक्ति में आनंदित क्यों होता है? ताकि वो भगवान को आनंदित करे। कि जब भगवान देखते हैं कि उनके भक्त उनके कीर्तन में उनके सत्संग में आनंदित हैं तो भगवान वो आनंदित होते हैं। यदि कल्पना कीजिए कि भगवान हमारे बुधवार के कार्यक्रम को देखें और बुधवार के कार्यक्रम में यदि सब लटकाया हुआ चेहरा आकर सब बैठे हैं हम, तो भगवान को क्या आनंद आएगा? हालांकि उनका नाम है सर्वोच्च आनंद प्रदायक कृष्ण, परंतु उनको आनंद मिलता है जब वो अपने भक्त को आनंदित देखते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद भी कहा करते थे कि हां हम आनंदित होना चाहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के जप में। क्यों? ताकि एक आनंदित भक्त जो सर्वोच्च आनंद के स्रोत हैं उन्हें और आनंद प्रदान करे। तो हमारे अंदर यह शक्ति है कि जो सर्वोच्च आनंद प्रदायक हैं भगवान श्री कृष्ण जो स्रोत हैं उनको हम और आनंद दे सकते हैं। और यह है भक्ति की महिमा और यह असली श्रेय है जो कि उस दाने के समान है, जो कि उस दही के समान है। और यही अर्जुन नहीं देख पा रहे, इसलिए केवल वो कह रहे हैं अनुपश्यामी हत्वा स्वजनम, मैं केवल अपने स्वजन को देख रहा हूं और उनको उनकी हत्या देख रहा हूं। और आगे चलकर फिर अर्जुन अपने और भी कारण प्रस्तुत करेंगे जिसकी चर्चा हम करेंगे अगले बुधवार। किसी का कोई प्रश्न? जैसे भगवान श्री कृष्ण का ये जो नाम है, प्रश्न ये है कि सर्वोच्च आनंद यहां पर हम देख रहे हैं तो राम इस शब्द का अर्थ क्या है? राधा रमण इति राम, राम का भी अर्थ है कि जो आनंद के घन है, जिसके अंदर श्रीमती राधा रानी रमण करती है। इस हरे कृष्ण महामंत्र में विशेष रूप से राम भगवान श्री कृष्ण को उल्लेख किया गया है, राधा रमण इति राम, कि जो राधा रानी में रमण करते हैं और जो राधा रानी प्रभु श्री कृष्ण में रमण करती है, इसलिए उनको नाम है राम। और जो कि रमणीय है, रमणीय का अर्थ है कि जिसके अंदर सारे सुख हैं। तो भगवान श्री राम का भी अर्थ यही है कि जो आनंद के घन स्रोत हैं, आनंद घन है सब कुछ। और कोई प्रश्न किसी का? ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।